शांति। बहुत सुंदर अभी हम सभी ने एक गीत सुना कि खुदा तू बता दे तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, तू रहता कहाँ है, ये दुनिया बनाने का तेरा मकसद क्या है। कितने सारे सवाल थे और शायद आज हर मनुष्य के मन के अंदर ईश्वर के प्रति ये सारे सवाल है, क्योंकि जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता रहती है कि हर कोई आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, चाहे विभिन्न नाम दिए, परंतु एक ही उस चैतन्य शक्ति की ओर इशारा है। परंतु जहां परमात्मा का विषय आता है वहां अनेक मत मतांतर हो गए हैं। और आज ईश्वर को लेकर के दुनिया में इतनी सारी मतें हैं कि आखिर भी उसमें से सत्य क्या है, ये समझना बड़ा कठिन हो गया है। एक बार एक माताजी मेरे सामने आकर के मुझे कहने लगे कि बहन जी, मेरा बेटा 17 साल का है और वो मुझे सवाल पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो मां उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है सारे भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक होना चाहिए, और अगर ये सारे भगवान हैं, तो इन सब का हेड कौन है। परिवार में भी एक परिवार का बड़ा होता है, तो ये सभी भगवानों का बड़ा कौन है। वो मां उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती है, और इसीलिए जब भी वो मां अपने बच्चे से कहती है बेटा मंदिर चलो, कोई विशेष त्योहार आदि होता है, तो वो बच्चा मना कर देता है, यही कहते हुए कि मंदिर जाने के बाद मैं बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता हूं कि अपने मन को एकाग्र कहां करूं। और इसीलिए वो बच्चे को लगता है कि मंदिर जाने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, मेरा मन तो लगता नहीं है, किसमें लगाऊं किसमें लगाऊं, इसी दुविधा में रहता है, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं। और इसीलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है। मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा नास्तिक हो रहा है, लेकिन उसके सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अगर यही बात मैं आप सबसे पूछूं कि मान लो कि कल को आपका बेटा आपसे यही सवाल करे या आपका पोता आपसे यही सवाल करे, तो क्या आपके पास उसका जवाब है। और कहीं उसने भी मंदिर जाना छोड़ दिया तो क्या आपको दुख होगा। आज इसीलिए शायद हमने अपने घरों में या मंदिरों में भी सारे देवी देवताओं के फोटो लगा दिए, ताकि जो भी सही हो, सबके आगे दिया बत्ती कर रहे हैं, जो भी सही हो स्वीकार कर लेना। क्या इसको विश्वास कहेंगे? क्या ऐसा विश्वास हो गया तो प्राप्ति क्या होगी। इसीलिए भी हमें सत्य जानने की आवश्यकता है कि सत्य कौन है। एक बार हमने एक कार्टून देखा कि जिसमें एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहले कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा है, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है कहां नहीं है, पांचवी कॉलम में लिखा था निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा के रूप है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान है तो दिखाइए या सबूत दो। अब जो व्यक्ति ये सारी मते पढ़ रहा था, सारा पढ़ने के बाद उसने क्या निर्णय लिया होगा, सत्य किसको कहा जाए, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है, क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? हाँ, कितना कंफ्यूजन है ईश्वर को लेकर के, और सारी मते एक दूसरे से विपरीत है, क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे साकार को कहे या है ही नहीं कहे। वो कहानी याद आती है कि एक बार पांच सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है, थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी का वर्णन कर लिया, एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंभे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सुंड आई तो कहा सांप जैसा है, और कान आए तो कहा सूप जैसा है, आखिर सत्य क्या है, क्या ये सभी सत्य है, इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है, जिसको वो देख नहीं पा रहे थे, क्या कहेंगे, आपका विवेक क्या कहता है? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा गया कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है, थे तो नेत्रहीन, एक एक करके जाते हैं छठे सूरदास के पास और कहते हैं कि देख भाई हाथी ऐसा है, पहला जाके कहता है लंबा लंबा खंभे जैसा है, दूसरा जाकर कहता है देख भाई हाथी ऐसा है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है, तीसरा जाकर कहता है देख भाई हाथी ऐसा है जो गोल गोल रस्सी जैसा है, चौथा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लचीला सांप जैसा है, पांचवा जाकर कहता है हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा पंखे जैसा है। पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि आखिर हाथी कैसा प्राणी है, हर कोई आता है अलग अलग बात बताता है, आखिर हाथी कैसा है, फिर भी वो विश्वास कर लेता है कि ये पांचों ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते, सही बोल रहे हैं, विश्वास कर लेता है। अब ये छठे सूरदास को कहा जाता है कि एक सातवां सूरदास और दूर बैठा है, उसको जाकर बताना है कि तुमने क्या समझा कि हाथी कैसा प्राणी है। तो छठा सूरदास जाता है सातवें सूरदास के पास और जाकर कहता है कि देख भाई, मैंने तो देखा नहीं ना महसूस किया, लेकिन पांच ने जो महसूस किया वो मैं तुझे बताता कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो लंबा लंबा खंभे जैसा हो जाता है, कभी तो वो सीधा सीधा दीवार जैसा हो जाता है, कभी तो वो गोल गोल रस्सी जैसा हो जाता है, कभी तो वो एकदम लचीला सांप जैसा हो जाता है, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। अब ये सातवां सूरदास उसकी बात सुन करके क्या कहेगा, क्या कहेगा, क्या कहेगा, कहेगा अरे भाई एक बात कहो ना, कोई प्राणी रंग बदल सकता है ये समझ सकते हैं, लेकिन पूरा ढांचा ही बदल दे, हड्डियों का ढांचा ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? कैसे तुमने मान लिया? इतना तो समझ लो कि ऐसा थोड़ी कोई प्राणी होता है। छठा सूरदास कहता है देख भाई, पांच ने तो महसूस किया, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो, यही कहेगा। शायद हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है, कि ऋषि मुनियों ने अपनी साधना की शक्ति से ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया, किसी ने सत्य को महसूस किया तो कहा सत्य ईश्वर है, किसी ने प्रेम को महसूस किया तो कहा प्रेम ईश्वर है, किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया तो कहा प्रकृति परमेश्वर है, किसी ने कोई मनुष्य आत्मा से महसूस किया तो कहा आत्मा ही परमात्मा है, किसी ने इष्ट देवताओं से कुछ महसूस किया तो कहा इष्ट देवता ही परमात्मा है, किसी ने निराकार में कुछ महसूस किया तो कहा निराकार है, न नाम है न रूप है न आकार है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? एक बात कहे ना, वो ऋषि मुनियों ने मनुष्य को जब समझाया ये सभी परमात्मा है, मनुष्य ने विश्वास कर लिया कि ऋषि मुनियों ने महसूस किया है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, सही बोल रहे हैं, विश्वास कर लिया। लेकिन वही मनुष्य जब आज की जेनरेशन के बच्चे को ये बात कहता है तो आज की जेनरेशन का बच्चा क्या कहता है? भई ये सभी परमात्मा कैसे हो सकते, एक बात कहो ना। तो मनुष्य क्या कहता है? देख भाई, ऋषि मुनियों ने कहा है, वो झूठ थोड़ी बोलते हैं, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। तो आज की जेनरेशन का बच्चा क्या कहता है? मैं नहीं मान सकता, या तो आपके पास कोई सबूत हो तो दिखाओ। और इसीलिए दिन प्रतिदिन विश्व के अंदर, खास करके भारत में, नास्तिकवाद बढ़ता जा रहा है। ईश्वर के प्रति वो श्रद्धा विश्वास है ही नहीं। सत्य क्या है? ये नहीं कि आज ब्रह्मा कुमारियों ने जो बताया कि हमें उसको मानना है, नहीं। आज हम आपको कोई मत नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत मते हैं ईश्वर को लेकर के। लेकिन आज हम आपको एक कसौटी देंगे, जिस पर आप अपनी मत को कस कर देखो सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। और वो कसौटी है पांच बातें। ईश्वर किसको कहा जाए? सबसे पहली बात है, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है, नहीं, गॉड इज वन, ईश्वर एक है। तो वो सत्य क्या है? दूसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसको कहेंगे सत्य। तीसरा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, कि मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, परमात्मा इन सभी चक्र से परे है, सर्वोपरि। न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, न कर्म है न कर्म का फल है, न पाप है न पुण्य है, न सुख है न दुख है, सभी चक्र से परे है। चौथा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्यंत का ज्ञान है, जो मनुष्य को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। ये तीन की महिमा भी उसी के साथ जाती, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति। और पांचवा, परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जिसके लिए मां शारदा ने कहा, सागर की स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ और स्वयं मां सरस्वती बैठकर ईश्वर की महिमा लिखे तो भी अपरंपार है जिसकी महिमा। तो ये पांच बातें हैं कसौटी, सर्वधर्म मान्य, सर्वोच्च शक्ति, सर्वोपरि, सर्वज्ञ और सर्व गुणों में अनंत, सर्वशक्तिमान। अब ये पांचों बातें किसके साथ लगती है? एक एक मत को अगर उठाकर देखे सत्य है। पहली बात, जब हम कहते हैं कि प्रकृति परमेश्वर है, तो क्या प्रकृति के साथ ये पांचों बातें लगेगी? क्या प्रकृति को सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या कहेंगे? करेंगे? क्या प्रकृति को सर्वोच्च शक्ति कहेंगे? किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, जिसने प्रकृति का इतना सुंदर चित्र खींचा, वो चित्रकार कौन है? तो सत्य क्या है? प्रकृति ही परमेश्वर है कहना सत्य है, या प्रकृति परमेश्वर की रचना है कहना सत्य है? क्या कहेंगे? आपकी आपकी विवेक क्या कहता है? प्रकृति रचना है, रचना है कहना सत्य है। तो प्रकृति को परमेश्वर मानना यह ज्ञान था, इट वॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस, जो हमने मान लिया सत्य तो नहीं है। दूसरी बात, जब हम कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो क्या आत्मा के साथ ये पांचों बातें लगेगी? अगर आत्मा ही परमात्मा हो तो फिर मंदिरों में जाकर के हमने ये क्यों गाया कि तुम मात पिता हम बालक तेरे? सत्य क्या है? हम ही परमेश्वर है या हम उस परमात्मा की संतान है? क्या कहेंगे? आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना ठीक है, तो आत्मा सो परमात्मा कहना अज्ञान है। कई बार कई लोग क्या सोचते कि नहीं, जीवन में अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा कोई बनने की चीज नहीं है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से कोई भी पोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लेता है, लेकिन कोई भी इंसान खुद का बाप बन सकता है, पिता जैसा बन सकता है, पिता जैसा बनकर पिता का कारोबार संभाल सकता है, लेकिन जब अपने पिता के सामने जाएगा तब बच्चा ही रहेगा। ठीक इसी तरह मनुष्य ने जैसा कर्म किया वैसा टाइटल जरूर मिला। किसी ने पुण्य कर्म किया तो कहेंगे पुण्यात्मा है, किसी ने महान कर्म किया तो कहेंगे महात्मा है, किसी ने धर्म का काम किया तो कहेंगे धर्मात्मा है, किसी ने दिव्य कर्म किया तो कहेंगे देवात्मा है। तो देवात्मा अनेक है, धर्मात्मा अनेक है, महात्मा अनेक है, पुण्यात्मा अनेक है, पापात्मा अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। ग्रामर में परमात्माएं शब्द नहीं आता है, गॉड इज वन यही कहा गया है। और ये सब भी आत्माएं हैं, परमात्मा कोई नहीं, पुण्य आत्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा, धर्म आत्मा, धर्म परमात्मा भी नहीं कहा, महान आत्मा, महान परमात्मा भी नहीं कहा, देव आत्मा, देव परमात्मा भी नहीं कहा। और भारत में देव आत्माएं भी कितने दिखाते हैं, कितने दिखाते हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं दिखाए, देव आत्माएं हैं, देव परमात्मा एक भी नहीं है। कई बार कई लोग क्या सोचते, जैसे सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ऐसे हम भी परमात्मा से निकले हैं और अंत में जाकर उसी में समा जाना है। ये कहां तक सत्य है? सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया, ये संभव है, क्योंकि वो मैटर है, तत्व है, तत्व तत्व में समा सकते हैं, संभव है, लेकिन आत्मा या परमात्मा तत्व नहीं है, शक्ति है, चैतन्य शक्ति है। आत्मा के लिए हमेशा यही कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, अजर जर्जर भी नहीं होती है, अमर मरती भी नहीं है, अविनाशी, जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं हो सकता है। सागर से बुदबुदा निकला और सागर में समा गया तो बुदबुदे का अस्तित्व समाप्त हो गया, बुदबुदा बुदबुदा नहीं रहा, सागर बन गया। तो आत्मा तो अविनाशी है, जिसके अस्तित्व का कभी विनाश नहीं हो सकता है, तो वो परमात्मा में मिलेंगे कैसे? और अगर मिल गए तो विनाशी हो गए, जो संभव नहीं, आत्मा शाश्वत शक्ति है, तो इसीलिए वो परमात्मा में मिलती नहीं है। कई लोग क्या सोचते, एक बड़ा परमात्मा था, फिर उसमें से टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे आए, अंश होकर के हम उसके नीचे आए, और फिर जाकर अंत में उसी में लीन हो जाना है, परमात्मा बन जाना है। अरे अगर ऐसे परमात्मा बन गए तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया फिर तो? नहीं, शाश्वत शक्ति है। शक्ति के लिए वैसे भी विज्ञान में कहा गया है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो उसका विनाश कैसे हो सकता है? सोचने की बात है। तो सत्य क्या है? आत्मा सो परमात्मा कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा की संतान है कहना सत्य है? क्या कहेंगे आपका विवेक क्या कहता है? संतान है कहना सत्य है। दूसरी बात, आत्मा परमात्मा का अंश है कहना सत्य है, या आत्मा परमात्मा का वंश है कहना सत्य है? हाँ, वंश है, हम अंश नहीं है, टुकड़े नहीं है, न टुकड़ा होता है न वो खत्म होता है, उसका अपना अस्तित्व है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई सबको? आगे बढ़े। तीसरी बात, जब हम कहते हैं ब्रह्म ईश्वर है, अज्ञानता के कारण हम दो दो बातें करते रहे। एक तरफ तो कहेंगे ब्रह्म ईश्वर है और दूसरी ओर उसकी महिमा में गाते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। पार, जो पांच तत्वों की दुनिया से पार ब्रह्म में निवास करने वाले ईश्वर। अब सत्य क्या है? ब्रह्म ही ईश्वर है कहना सत्य है या पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य? क्या कहेंगे? पार ब्रह्म परमेश्वर है कहना सत्य है। क्लियर हो गई बात? आप ही कह रहे हैं, है ना? चौथी बात, जब हम कहते हैं कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है, ये कहां तक सत्य है? क्या सचमुच सब में ईश्वर है, कण कण में व्यापक है? आज क्या आपका विवेक इस बात को स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है, कण कण में है? आपका विवेक स्वीकार करता है कि कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान है? क्या कहेंगे? नहीं। तब मनुष्य क्या कहता है कि नहीं, सभी आत्मा के बाजू में परमात्मा बैठा हुआ है। शरीर के अंदर हर प्राणी में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। अब ये कहां तक सत्य है? अगर हर प्राणी में आत्मा भी और परमात्मा भी बाजू में बैठा हो और एक व्यक्ति दूसरे का खून करता है तो ये कर्म किसका, आत्मा का या परमात्मा का? क्या कहेंगे? आत्मा का या परमात्मा का? आत्मा का। अगर ये कर्म आत्मा का है तो उस समय अंदर बैठा परमात्मा क्या कर रहा था? क्या सर्वशक्तिमान के पास इतनी शक्ति नहीं जो एक आत्मा को गलत कर्म करने से रोक सके? तो फिर उसका बैठने का कोई मतलब है? आज घर में बच्चे होते हैं, किसी कारण से लेकर के बच्चे अगर लड़ाई झगड़ा करने लगे और माँ बाप सामने बैठे तो क्या करेंगे? छुड़ाएंगे या झगड़ो? क्या कहेंगे? छुड़ाएंगे ना। तो परमात्मा अगर हमारा माँ पिता है, वो हमारे अंदर बैठा है, बाजू में बैठा है और मनुष्य इतना उसी के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं और वो कुछ कहे ही नहीं, तो उसका बैठने का मतलब क्या है? आज कोई हमें बात पूछता है, बताता है, हमें मालूम नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला जाना, छोड़ो ना, तुम क्यों झंझट में पड़ते हो, कहते हैं ना। कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने? फिर ये ऊपर वाला कौन था, नीचे वाला कौन है? फिर सब में बैठा हुआ वो कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में जब ये भगवान ने वायदा दिया, यदा यदा ही धर्मस्य भावार, के जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं इस संसार में आता हूं। अगर वो आता है, ये उसका वायदा है, भगवान हुआ आज तो नहीं है तभी तो आएगा, अगर यही है तो क्यों आएगा, कौन आएगा? और उसके होते इतना अधर्म कैसे? कई सवाल मन के अंदर उत्पन्न हो जाते। आज देखो प्रकृति के पास भी ये विशेषता है कि संग का रंग लग जाता है। अग्नि के अंदर लोहा रखो तो अग्नि के संग में लोहा भी लाल और गर्म हो जाएगा, संग का रंग। आज मनुष्य भी थोड़े दिन किसी के संग में रहता है तो उसको भी संग का रंग लग जाता है। मनुष्य तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी संग का रंग लगता है। तो क्या परमात्मा सर्व गुणों में अनंत अगर हमारे बाजू में बैठा हो और उसके कोई गुणों का संग का रंग में न लगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। लेकिन तब फिर बात यही आती है कि सर्वव्यापकता की बात भी तो शास्त्रों में ही आई है, तो क्या शास्त्र गलत है? नहीं, शास्त्र भी गलत नहीं है। अगर शास्त्र भी गलत नहीं है तो सत्य क्या है? शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? अनुभव के बेसिस पर लिखे। और कहा जाता है कि उस समय के ऋषि मुनि बड़े सिद्ध आत्माएं होते थे। जब वो साधना में बैठते थे, समाधि में चले जाते थे, तो उस वक्त समाधि अवस्था में वो बहुत कुछ देख सकते थे, समय को देख सकते थे। और जब वो ये देखते थे कि कली काल जब आएगा तो उस समय संसार पर कितना पाप होगा, तब उन्होंने शास्त्र में ये बात लिख दी कि हे मानव, तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान सर्वव्यापी है, वो तुझे देख रहा है, कण कण में वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य को एक डर रहे कि भगवान मुझे देख रहा है और पाप कर्म न करे। तो पाप कर्मों से सुरक्षित रखने के लिए बात कही गई। जिस तरह आज एक छोटा बच्चा होता है, जब घुटना करना सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाना चाहता है, और उस वक्त माँ को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाती है, बाहर एक कुत्ता दिखाती है और कहेंगी, देख बाहर गए ना, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, बाहर ना जाए। घुटना करते हुए दरवाजे तक जाता भी है, बाहर कुत्ते को देखता है तो क्या करता है? वापस अंदर आ जाता है, खुश होता है, मैं सुरक्षित हूं। परंतु वही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, 4-5 साल का हो जाए, उसके बाद उसको तो कह के देखो कि बाहर गया तो कुत्ता उठा के ले जाएगा, क्या कहेगा? हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ भी कैसी, इतना भी नहीं समझती है कि कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला है क्या, और हंसते हुए निकल जाता है। यानी जिस बात को उसने सत्य मान लिया था बचपन में, समझदार होने के बाद उस बात को स्वीकार नहीं करता है। ठीक इसी तरह जब ऋषि मुनियों ने ये बात कही थी कि कली काल जब आएगा तो घोर पाप कर्म होगा, तो मनुष्य को पाप कर्म से बचाएं कैसे, तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिखी थी। परंतु आज जब विज्ञान का युग आया, मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, हर बात का तर्क है उसके पास, और इस युग में अगर कोई कहे कि तू क्यों इतना पाप करता है, भगवान तुझे देख रहा है, तो क्या कहता है? अरे वो देखता क्यों है, छुड़ाए ना। आज से 200 साल पहले भी किसी को अगर कोई प्रेरित करता था पाप करने के लिए, तो लोग क्या कह देते थे? अरे बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला भी देख रहा है, मना कर देता था। और आज विज्ञान के युग में जब मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार हो गया, और कोई उसको याद भी दिलाता, अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है? वही डायलॉग मारता है, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा। कई बार कई लोग हमसे बहस करते, आप क्या कहना चाहते हैं, बहन जी भगवान सर्वव्यापी नहीं है? हम उनको पूछते, आप मानते हैं? कहते हैं हाँ हम मानते हैं ना भगवान सर्वव्यापी है, कण कण में है, फिर हम एक ही बात कहते, तो इसका मतलब अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म नहीं किया होगा, क्योंकि जो मानता हो कि भगवान मुझे देख रहा है उससे कभी कोई पाप कर्म हो सकता है? जब ये बात कहते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसी बात थोड़ी, पाप तो होता ही है ना। अरे जब तुमको मानना ही नहीं है कि भगवान मुझे देख रहा है, ये स्वीकार नहीं करना है, तो क्यों ये गलत प्रचार कर रहे हो? सर्वव्यापकता की बात एक भावनात्मक सत्य है, कि इस भावना को लेकर चलो, जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं होगा। लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि ये माइक में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये टेबल में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये कुर्सी में परमात्मा इसलिए बैठ के इसकी पूजा करूं, ये अंधश्रद्धा है। हमें अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना है। इसीलिए कहा कि भावनात्मक सत्य है, सिद्धांतिक नहीं। इस भावना को लेकर चलो, जीवन में हमेशा हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? कोई प्रश्न तो नहीं? अभी आगे बढ़े। पांचवी बात, जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, ना नाम है ना रूप है ना आकार है। अब नाम रूप से न्यारा इस संसार में कोई चीज है? है? अरे हवा जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक चित्रकार को अगर चित्र निकालना हो और उसको चक्रवात तूफान दिखाना है तो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है? चित्र को देखकर कहेंगे चक्रवात चल रहा है। और शांत प्रकृति दिखाना है तो वो भी दिखा सकता है, जैसे हवा चल ही नहीं रही है। पूरा प्रतिबिंब तालाब के अंदर दिखा दिया, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी शांत प्रकृति। तो जो हवा का आकार नहीं है उसको भी एक चित्रकार अपने चित्र के अंदर ढाल देता है, तो नाम रूप आकार बिना इस संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो क्या परमात्मा स्वयं नाम रूप आकार बिना हो सकता है? तो उसका नाम रूप आकार क्या है? निराकार जो कहा, किस भाव से कहा? शाब्दिक अर्थ में नहीं कहा गया। जैसे ईश्वर की महिमा में गाते वह निर्गुण है, निर्गुण का भी अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो जिसमें कोई गुण ना ही, लेकिन वो तो गुणों में अनंत। तो निर्गुण क्यों कहा गया? निर्गुण इसलिए कहा गया कि प्रकृति के जो तीन गुण है, सात्विक राजसिक तामसिक, ये प्रकृति के गुण से वो परे है, इसलिए कहा निर्गुण। तो निराकार माना प्राकृतिक आकार से वो परे है, इसीलिए उसको कहा निराकार। लेकिन उसका अपना आकार तो है, वो कौन सा है? तो जिस तरह एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति पुंज। अगर आत्मा का स्वरूप ज्योति पुंज है, चैतन्य ज्योति है, इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप, तो उसका पिता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? वो भी प्रकाश पुंज है। अब उसके साथ वो पांचों बातें लगेगी। तो हिंदू धर्म में जिसको ज्योतिर्लिंगम के रूप में पूजा गया, ज्योतिर्लिंग यानी जो ज्योति की आकृति, जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाला है, गुणवाचक नाम है। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होते। किसी का नाम होगा शांति भाई, लेकिन जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा, शांति नाम की नहीं होगी, है ना? किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद, और झोंपड़ा भी नहीं होगा, त्रिलोक चंद। किसी का नाम होगा अमीर चंद, होगा फकीर चंद। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। शिव माना सदा कल्याण करने वाले, शिव माना परम पवित्र, शिव माना शांति का दाता, गुणवाचक नाम। इसीलिए भारत भर में 12 ज्योतिर्लिंगम है जो आज भी महान तीर्थ स्थान है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा में शिव की पूजा होती है। नॉर्थ में चले जाओ अमरनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, साउथ में चले जाओ श्री रामेश्वर के रूप में उसकी पूजा होती है, ईस्ट में चले जाओ काशी विश्वनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, वेस्ट में चले जाओ सोमनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, भारत से बाहर जाओ नेपाल में पशुपतिनाथ के रूप में उसकी पूजा होती है, चारों ओर उसकी पूजा होती है। और इसीलिए मंदिरों का नाम भी गुणवाचक कर्तव्यवाचक है। और जिसका नाम नाथ या ईश्वर में पूरा होता है, अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सारे शिव के मंदिर हैं, जो सर्व का नाथ और ईश्वर है। देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई। नॉर्थ में जाएंगे श्री राम श्री कृष्ण की पूजा अधिक मिलेगी, लेकिन साउथ में चले जाओ तो श्री वेंकटेश बालाजी की पूजा मिलेगी, तो कलकत्ता चले जाओ काली पूजा दुर्गा पूजा मिलेगी, तो गुजरात महाराष्ट्र में जाओ गणेश पूजा मिलेगी, तो तमिलनाडु में जाओ मुरुगन की पूजा मिलेगी, कार्तिकेय की पूजा मिलेगी। तो देवताओं की पूजा स्टेट वाइज हो गई, महादेव की पूजा गांव गांव में होती है। भारत का कोई गांव भी ऐसा न हो कि जहां महादेव जी का मंदिर न हो, बाकी देवी देवता का हो न हो, महादेव जी का मंदिर जरूर होगा। है, है? और इसीलिए दिखाया गया है कि महादेव जी का जब मंदिर बनता है तो शिवलिंग की प्रतिमा को दरवाजे से नहीं लाया जाता, स्थापित किया जाता है। कहां से लाते हैं? कहां से लाते? ऊपर से लाते। ऊपर गुंबज नहीं लगाया जाता है, शिव की प्रतिमा को, लिंग को ऊपर से नीचे उतारा जाता है और स्थापित किया जाता है, दरवाजे से नहीं लाया जाता है। क्योंकि परमात्मा एक ही है जो इस संसार में अवतरित होते हैं, किसी माता के गर्भ से संसार में नहीं आते। इसीलिए भक्ति में भी ये यादगार है कि शिवलिंग की प्रतिमा को ऊपर से उतारा जाता है, अवतरित है, जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा है। जिसको कहा गया देवों का भी देव, महादेव, जिसकी पूजा देवी देवताओं ने भी की, ऐसे शास्त्र में दिखाते, भक्ति मार्ग में दिखाते, कि रामेश्वरम में श्री राम ने भी जिसकी पूजा की, अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, बताइए? क्योंकि स्वयं श्री राम भी बहुत अच्छे से जानते थे कि जिसके सामने मैं युद्ध करने जा रहा हूं, रावण, जिसको अपनी शक्ति पर इतना घमंड है, वह ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो शक्ति स्वयं रावण की भी नहीं है। रावण ने भी वो शक्ति कहां से प्राप्त की थी? शिव भक्त था, इसीलिए तो भोलेनाथ कहते हैं कि रावण ने याद किया तो उसको भी शक्ति दे दी, श्री राम ने याद किया तो उसको भी शक्ति, इतना भोला है, जिसने भी प्यार से याद किया उसको शक्ति मिल गई। इसी तरह वृंदावन में दिखाते कि बचपन से श्री कृष्ण ने गोपों के साथ मिल करके शिव की पूजा की थी, इसीलिए तो गोपेश्वर मंदिर यादगार के रूप में रखा है भक्ति में। जिन देवियों की पूजा करते हैं, ये देवियां कौन है? तो कहते शिव शक्ति की आरती जे कोई गाए, शिव शक्ति की आरती। शिव की उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं असुर संहारनी शिव शक्तियां। तो जो देवों का भी देव, देवियों का भी देव, वो है महादेव। लेकिन यहां भारतवासी एक गलती कर देते हैं, जो शिव और शंकर दोनों को मिला देते हैं, जहां दोनों का नाम भी अलग है, शिव और शंकर, जहां दोनों की आइडेंटिटी अलग है, स्वरूप ही अलग है, एक है निराकार ज्योतिर्लिंगम, एक है आकारी देव पुरुष, जहां दोनों का कार्य भी अलग है। शिव को कहा भोलेनाथ, शंकर के लिए कहते तीसरा नेत्र खुलता है तो मां विनाश हो जाता है। तो एक है भोलेनाथ सदा कल्याण करने वाले, एक है विनाशकारी प्रलयकारी प्रलयनाथ। नाम अलग, रूप अलग, कार्य अलग, फिर एक कैसे हो सकता है? जब भी कोई मंत्र देता है तो ओम नमः शिवाय देता है। किसी ने आज दिन तक ओम नमः शंकराय कहा? भारत में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, उसको शंकर रात्रि कहा जाता है। एक है तो कहना चाहिए, क्यों नहीं कहते? ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, शंकर देवताएं नमः, और फिर कहते शिव परमात्मा ही नमः। शिव परमात्मा है, शंकर देवताएं नमः, शिव परमात्मा ही नमः। एक देवता एक परमात्मा है। शंकर को हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया, किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? और शंकर को ध्यान करने की आवश्यकता क्या थी? कहते कैलाश पर्वत पर जाकर उसने परमात्मा का ध्यान किया। कैलाश माना दुनिया का सबसे बड़े ते बड़ा शिवलिंग, पूरा पर्वत ही शिवलिंग आकार का है। अगर शंकर ने भी ध्यान किया, क्यों किया? उसको महत्वपूर्ण कार्य सौंपा हुआ था कि आंख खोलते महाविनाश होना चाहिए, तो कितनी प्रचंड शक्ति होनी चाहिए तब ये काम कर सके। इसलिए इतने सालों उसने ध्यान करके एकाग्रता द्वारा उस शक्ति को प्राप्त किया, तब आंख खोलते महाविनाश कर सके। ये तो हुई भारत वालों की बात। भारत से बाहर जाते इस्लाम धर्म में, जहां मूर्ति पूजा नहीं है, परंतु मक्का के अंदर काबा का पवित्र पत्थर है, और इस पवित्र पत्थर के पीछे कहानी है कि कहा जाता है कि पहले मक्का के अंदर 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे, परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब वहां आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या ये हमारे अल्लाह नहीं है? उसने कहा अल्लाह एक है। आखिर मोहम्मद पैगंबर साहब को मक्का से मदीना भेज दिया गया कि वहां जाकर के ये कहते रहो, यहां नहीं। मदीना जाकर के भी यही प्रचार चलता रहा, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। धीरे धीरे लोग उस विचारधारा से जुड़ते गए, अल्लाह एक है। जब काफी मात्रा में लोग हो गए तब पुनः मक्का आए, अल्लाह एक है। काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, उस समय एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मुझे इसी स्वरूप में याद करो। और ऊपर से ये पत्थर गिरा था, इसीलिए उसको काबा का पवित्र पत्थर कहा जाता है। उसी समय वो 360 देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया, ये पवित्र पत्थर की स्थापना कर दी गई, और तब से लेकर के ये मान्यता है कि जीवन में एक बार ये पवित्र पत्थर का दर्शन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो तब तक जीवन सफल नहीं हुआ। इसलिए हर साल उनकी हज यात्राएं निकलती है। हज में भी हर कोई नहीं जा सकता है, हज में जाने के नियम बहुत कड़े हैं। लेकिन जो हज में जाता है वो क्या करता है, वहां अपने पापों का प्रायश्चित करता है, शैतान को पत्थर मारता है, ये पवित्र पत्थर को चूमता है, 7 बार उसकी परिक्रमा करता है और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहेगा जिस लाइन के बिना उसका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार नूरे इलाही मेरा हज कबूल हो। तब उनका हज कबूल होता है। 7 बार परिक्रमा सिर्फ हिंदू धर्म में होती है और सिर्फ मक्का में होती है, और कोई मस्जिद में नहीं होती है। और जो कहा अंत में कि हे परवरदिगार नूरे इलाही, नूरे इलाही का मतलब है अल्लाह नूर है। नूर का मतलब, नूर का मतलब तेज, प्रकाश, लाइट। ज्योति का मतलब, ज्योति का मतलब लाइट। जिसको हिंदुओं ने ज्योति कहा उन्होंने नूर कहा, बात एक ही है, ये अलग है, हा? एक ही तो है। और आगे जाए, यहूदियों में कहा जाता है कि जब मोसेस माउंटेन पर गए, जहां उनको 2 पत्थरों पर 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिसको देख करके मूसा ने कहा यहोवा, यानी द सुप्रीम लाइट। उसने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा, गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। जब उनको क्रॉस पर चढ़ा रहे थे उस वक्त भी अपनी अंतिम प्रार्थना में उसने यही कहा, हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। हे प्रभु किसको कहा? आज भी अगर वेटिकन सिटी चले जाओ, जहां पोप की गद्दी है जो सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है क्रिश्चियन धर्म में, वहां उस चर्च के अंदर आपको किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं मिलेगी, जीसस की भी प्रतिमा नहीं है, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप निराकार लाइट का ही सिंबल मिलेगा, जिसको क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा, बात एक ही है या अलग है? एक ही तो है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में उसकी महिमा गाई है, एक ओंकार निराकार निर्वैर, कितना सुंदर तरीके से गाई सारी महिमा। निराकार है, निर्वैर है, वही एक सत्य नाम है जिसको काल कभी खा नहीं सकता है, जो किसी योनियों में नहीं आता है, जोनी है, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, वहां वाहे गुरु किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, उस ज्ञान सागर निराकार परमात्मा के लिए ही कहा गया है। और आगे चले, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं और ये 24 के 24 तीर्थंकर ध्यान मुद्रा में दिखाए गए हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? उनसे श्रेष्ठ कौन था? महावीर ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। किसका ध्यान करते थे? तो कहा सिद्ध शिलापति जो सर्वश्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कोई हस्ती नहीं, सिद्ध शिलापति। और आगे जाए, महात्मा बुद्ध ने कभी मूर्ति पूजा की और किसी को प्रेरित नहीं किया, परंतु उनको भी हमेशा ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। किसका ध्यान करते हैं? आज भी जापान चले जाओ तो 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता है जो बिल्कुल शिवलिंग आकार का होता है, और उसको परमात्मा का दिव्य स्वरूप मान करके मेडिटेशन करते हैं। कहते हम ध्यान करते तो हमारा मन शांत हो जाता है। नाम दिया चिंकोन से की चिंकुन सेकी का मतलब है जो शांति का दाता है, है ना? और आजकल विज्ञान भी इस आकृति के स्वरूप पर रिसर्च कर रहा है, शिवलिंग की आकृति पर रिसर्च कर रहा है। और ये पाया गया है कि सबसे अधिक ऊर्जावान पत्थर अगर है, आकृति है, तो यही आकृति है, शिवलिंग की आकृति। इसलिए भारत के अंदर आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर एक कलशी होती है जहां से बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, क्योंकि सबसे ऊर्जावान अगर यही स्वरूप है तो कहते उसको शीतल रखना आवश्यक है। भारत में इसीलिए पहले बहनों को, नारियों को शिवलिंग की प्रतिमा की पूजा करने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें इतनी श्रद्धा से अगर पूजा करेंगी और सबसे ऊर्जावान अगर यही स्वरूप है तो सारी ऊर्जा तो वही खींच लेंगी, तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का क्या होगा, इसीलिए अनुमति नहीं देते थे। और आज इसीलिए शायद ब्रह्मा कुमारी सारे विश्व के अंदर लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ध्यान के द्वारा सारी ऊर्जा को अपने में समा रही है। और आगे जाए पारसी धर्म में, कहा जाता कि पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी उनके मंदिर को कहा ही जाता है द फायर टेम्पल, जहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है। तो सर्वधर्म मान्य, पहली कसौटी, सर्वधर्म मान्य कौन है? जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। साईं बाबा ने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा, सबका मालिक एक कहा। तो जिसके तरफ सभी ने अपनी अंगुली का इशारा किया, जो देवों का भी देव महादेव, जिसकी पूजा या ध्यान सभी देवी देवताओं ने भी किया, यही भक्ति मार्ग में दिखाया, तो वो एक ही स्वरूप है जिसको भारतवासियों ने हिंदू धर्म में ज्योति कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, क्रिश्चियनों ने लाइट कहा, गुरु नानक देव ने निराकार स्वरूप दिखाया, तो महावीर स्वामी ने सिद्ध शिलापति कहा, महात्मा बुद्ध ने चिंकुन सिकी कहा, अखंड ज्योति कहा। हर धर्म में एक ही तो स्वरूप है, तो झगड़ा किस बात का? झगड़ा किस बात का ईश्वर के नाम पर? सर्व धर्म मान्य एक ही है, तो आज के बाद झगड़ा होगा नहीं। हम सबका माता पिता एक ही है, नाम भले अलग अलग दिए हो, वो तो कोई आपको भी चाचा कहे, मामा कहे, भाई कहे, पिताजी कहे, लेकिन आपका स्वरूप वही रहेगा या हर बार बदली हो जाएगा? वही रहेगा ना। ऐसे गॉड कहा, अल्लाह का, ईश्वर का, प्रभु का, मालिक कहा, स्वरूप तो एक ही है, है ना? वही सर्वोच्च शक्ति है जिसके प्रति सभी ने अपनी अंगुली का इशारा दिखाया, सर्वोच्च। इसीलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, उत्पन्न करने वाला कोई नहीं, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न गुरु है, न शिक्षक है, कोई नहीं है, स्वयं प्रकट हुआ है। वही सभी चक्रों से पर है, सभी चक्रों से परे दुनिया के अंदर, वह अजन्मा, अकाल मूरत, अव्यक्त स्वरूप, अकर्ता भोक्ता, पाप पुण्य के चक्र से दूर, और दुख हरता सुख करता। तो जन्म मृत्यु के चक्र से परे, देह और देह के संबंधों के चक्र से परे, कर्म और कर्म के फल के चक्र से परे, पाप पुण्य के चक्र से परे, और सुख दुख के चक्र से परे, लेकिन पर होते हुए भी सर्वज्ञ, इसीलिए शिवलिंग के ऊपर तीन लकीर लगाई जाती है जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। तीनों कालों को जानने वाला और सत्य ज्ञान होने कारण उसको सत्यम कहा। वो तीन लकीर के बीच में एक आंख होती है, अर्थात जो मनुष्य आत्मा को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले, त्रिनेत्री जिससे मनुष्य कल्याण का दर्शन कर सके। और उसकी पूजा में तीन पत्र का बेल पत्र चढ़ाया जाता है जो एक डंडी से जुड़ा होना चाहिए, अलग अलग पत्ते नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है और उसकी हर रचना सुंदर होने कारण उसको सुंदरम कहा। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, एक ही परमेश्वर के लिए कहा। इसीलिए ये तीन मूर्तियों का गायन भी हर धर्म में मिलेगा। हिंदू धर्म में उसको कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, इस्लाम धर्म में उसको कहते जिब्राइल मिकाइल इसराफिल, क्रिश्चियन धर्म में उसको कहते थ्री होली एंजल्स। गुरु नानक देव ने भी कहा एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, है ना। तीनों मूर्तियों का गायन है और जो जिसकी उत्पत्ति किसी माता पिता के द्वारा नहीं हुई है, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा से डायरेक्ट उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये तीन देवताओं का भी जन्म नहीं दिखाया जाता है, है ना। जीओडी गॉड फादर कहा, यानी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर का जो फादर है, तो इसीलिए सर्वज्ञ स्वरूप, ठीक है ना। कहने का भावार्थ सत्य ज्ञान है उसके पास, मनुष्य को कल्याण करने की दृष्टि प्रदान करते हैं और उसकी हर रचना अति सुंदर दिखाई गई है, इसलिए उसको कहा सुंदरम। और पांचवी बात, वही सर्व गुणों में अनंत है, सर्वशक्तिमान है। इसीलिए ज्योमेट्री के अंदर बिंदु की डेफिनेशन क्या होती है, इन्फिनिट, अनंत। विज्ञान में सबसे सूक्ष्म अणु को माना जाता है और कहते हैं जितना अणु सूक्ष्म उतना शक्तिशाली। तो भगवान ने गीता में कहा मैं सूक्ष्म ते सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म हूं, इसलिए सर्वशक्तिमान है। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। जैसे किसी व्यक्ति का परिचय लेते हैं तो पांच बातें पूछते हैं, आपका नाम क्या है, फिर आइडेंटिटी वही है या दूसरा है, फोटो चाहिए, तीसरा क्वालिफिकेशन, चौथा एड्रेस और पांचवा प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। पांच बातों में संपूर्ण परिचय आ जाता। तो आज परमात्मा के परिचय में भी हमने पांचों बातों को देखा, जिसका नाम है सदा शिव, यहोवा गॉड, अल्लाह ईश्वर प्रभु मालिक, सिद्ध शिलापति या चिंकुन सिकी, अखंड ज्योति स्वरूप। उसका स्वरूप है निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, नूर प्रकाश लाइट अखंड ज्योति। उसके क्वालिफिकेशन पांच बातें, सर्वधर्म मान्य सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वज्ञ सर्व गुणों में अनंत सर्वशक्तिमान। उसका एड्रेस पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर, जो पंच तत्व की दुनिया से पार, जिसको ही मोक्ष धाम कहा किसी ने, निर्वाण कहा किसी ने, परम धाम का, शांति धाम का, सचखंड कहा, रूहानी दुनिया कहा, हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, अलग अलग नाम दिए गए उस धाम को भी जहां का निवासी है। और उनका कर्तव्य क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की अति ग्लानी हो जाती है तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कराना, खुद नहीं करता है, करण करावनहार है ब्रह्मा द्वारा सृजन, शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा पालना का कार्य कराने वाला कौन, एक परमेश्वर। तो ये था परमात्मा का संपूर्ण परिचय। अब तो कोई दुविधा नहीं होगी। अब तो अगर आपका बेटा या आपका पोता आपसे पूछे कि परमात्मा कौन या ये सभी भगवानों का हेड कौन, तो बता सकेंगे या नहीं बता सकेंगे? ना? अच्छा, ओम शांति।